ओम शांति। आज अमृतवेले की विधि और फायदे वो रिवाइज करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अमृतवेला क्यों करने चाहिए। जैसे फर्स्ट लेसन में डॉक्टर हिना ने बताया था, अलग अलग धर्मों में अमृतवेले के बारे में या जो सवेरे उठते हैं उसके बारे में अलग अलग बातें बताई हुई है। तो जब मैंने प्राणायाम सीखा था 20 साल पहले, तो उस समय जो हमारा सर था उसने बताया था कि जब अमृत वेले का जो समय होता है 4 बजे के आसपास, हमारी दोनों नाक जो खुली होती है। राइट वाला जो होता है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं और जो लेफ्ट वाला होता है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। दिन का जो बाकी का समय होता है उस समय ये दोनों नाक नहीं खुली होती है। एक तो सवेरे के 4 बजे के आसपास का समय होता है और शाम का 4 बजे का जो आसपास का समय होता है उस समय ही हमारी दोनों जो नाके हैं जो ये खुले होती है, बाकी जो है ये अल्टरनेट चलते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई अगर बीमारी नहीं है, तो सवेरे का समय और शाम का समय उसकी दोनों नाक खुली होंगी। तो हाँ, तो अभी अमृत वाला करके आए ना, तो इस तरह से होता है। और कहते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसकी जो नाक उस समय चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, वो नहीं चलकर चंद्र नाड़ी चलती है, मतलब अपोजिट चलता है। मानो वो व्यक्ति बीमार है, अगर हमारी बीमार बॉडी में कुछ भी तकलीफ है तो। इसलिए जो सवेरे का समय होता है उस समय अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप ध्यान करो या पढ़ाई करो या जो कुछ आप करो, उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा अगर आप दिल से करते हैं तो। इसलिए जैसे बताते हैं ना, स्कूल के टाइम में जो हम लोग भी जो है, मम्मी हमेशा सवेरे 4 बजे उठाती थी, 3:30-4 बजे पढ़ाई करने के लिए, खास करके एग्जाम के दिनों में। तो ये समय जो होता है, अगर आप उस समय सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जैसे कोई कहते हैं ना कि रात भर नींद नहीं आई, लेकिन जो है 2:30-3 बजे के बाद में नींद आनी ही आनी है। कोई कितना भी बीमार पेशेंट हो उसे रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन वो बोलेगा 3 बजे के बाद जो है सो गए, अच्छी नींद आई। और जो शाम का समय होता है, वैसे 4 बजे के आसपास का समय होता है, उस समय जो लोग दिन में रेस्ट नहीं करते, मतलब जैसे हम यहाँ सवेरे उठते हैं तो दिन में लोग कई बार रेस्ट करते भी हैं, लेकिन बाहर वाले जैसे होते हैं तो शाम के समय दिन में रेस्ट नहीं करते हैं। तो शाम का समय जो होता है 4 बजे के आसपास थोड़ी बहुत सुस्ती आई जाती है। अगर आप उस समय चले गए बेड पे 4 बजे के आसपास तो आपको नींद आनी ही आनी है। तो इसलिए फिर लोग उस समय क्या करते हैं, चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, थोड़ा टहल के आओ। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि उस समय जो हमारी दोनों नाक जो है चलती है। तो जब मैं ज्ञान में आया उसके बाद में जब मैंने सुना, मतलब याद आया मुझे, तो मैंने सोचा कि देवताओं की शायद दोनों नाके चलती है ऑल द टाइम, पूरे 24 घंटा। इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है और वो हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं और हमेशा इतना किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती देवताओं को, क्योंकि उस समय प्रकृति जीत होते हैं। तो हमारी बॉडी या जो हमारा ज्ञान, जिस प्रकार से हम बताते हैं कि इसमें कोई भी अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि भाई एक ने कहा और दूसरे ने माना, ऐसा नहीं है। हर एक बात जो है, हर एक चीज जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है। तो एक जो बताया ऐसे, और दूसरा जो ये समय होता है सवेरे का समय, उस समय जो है ये सत्व प्रधान समय होता है। दिन का बाकी का समय भी सत्व प्रधान होता ही है, लेकिन उस समय जब सब आत्माएं जग जाती है, हर एक के वाइब्रेशन इतने चलते हैं, फास्ट निगेटिव जो भी चलता है, तो उससे जो है सत्व प्रधानता कम होती जाती है, रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होते जाते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि रात का समय जो है 11-12-1 बजे तक का समय ठीक नहीं होता, 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद जगो तो समय अच्छा होता है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो ये सारी शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां जो है, वो शक्तियां हमेशा ही रहती है, एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि लोग कई बार अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप हिल स्टेशन पर जाके आओ। तो हिल स्टेशन पर क्या होता है, फ्रेश एयर होती है, लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो फुल्ली चार्ज होता है, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं है। लेकिन आजकल आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे वो हिल स्टेशन गए थे वहां पर भी सब अब खराब हो गया है। तो क्यों खराब क्यों हो गया, क्योंकि लोग ज्यादा जाने लगे वहां पर, हाँ वातावरण जो है वहां का खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे संकल्प जो करते हैं जिस प्रकार से वेस्ट हो, निगेटिव हो, जहां पर लोग कम जाते हैं वहां पर जाना चाहिए। तो उससे फायदा होता है, उससे हम जो हमारी जो एनर्जी जो है, हमारी बुद्धि जो है उससे चार्ज होती है। तो उससे जो है सत्व प्रधान जो समय होता है वो सवेरे का ही समय होता है। जैसे कहा ना कि उस समय आप कुछ भी करो, चाहे ज्ञान मार्ग की बातें हो, चाहे भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी लोगों ने क्या किया, सवेरे उठ उठ कर इतना लोगों का साक्षात्कार हुआ, भले वो ब्रह्म को ही भगवान समझते थे लेकिन हमें भविष्य ज्ञान मार्ग में उन सब चीजों की आश नहीं रखनी है साक्षात्कार की, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि वो भी माया है, क्योंकि वो भी एक माया थी ना, कि उन्होंने ब्रह्म को ही घर समझ लिया, भगवान को ढूंढने के बजाय वहीं पर फंस गए। तो ऐसे जैसे बताते हैं कि ये जो समय होता है उस समय देवताएं भी जो है धरती पर चक्कर लगा रहे हैं, तो अलग अलग धर्मों में बहुत सारी बातें बताई हुई। तो ये जो सवेरे का समय होता है ये सत्व प्रधान समय होता है, उस समय आप जो कुछ करो, चाहे आप नींद भी करो जैसे बताए, तो बहुत अच्छी नींद आएगी। हर चीज में आपको 100% सक्सेस मिलेगा अगर आप पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे लगन से कर रहे हैं। तो जो इसमें 13वां पॉइंट है वो भी रिवाइज करेंगे। अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हें संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा। जितना आप उन्हें संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वो कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। संकल्प द्वारा सेवा करना भी सेवा का श्रेष्ठ और क्या है, सहज साधन है। और संकल्प द्वारा सेवा करना भी सेवा का श्रेष्ठ और फास्टेस्ट। और हम मनसा सेवा रिवाइज कर चुके हैं, बहुत बड़ी सीरीज। तो क्या है संकल्प द्वारा सेवा करना है, क्या है सेवा का श्रेष्ठ और सहज साधन है और शक्तिशाली नया तरीका है। तो बाबा की वो बहुत पहले की मुरली हो गई जिस समय बाबा ने कहा था, क्योंकि नया तरीका है। आजकल भी जैसे दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारी किताबें जो है थॉट्स पावर या माइंड पावर के ऊपर निकल चुकी है, लेकिन बाबा ने जिस समय यह ज्ञान दिया था उस समय यह ज्ञान लोगों के पास नहीं था। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि संकल्पों द्वारा सेवा करना भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। तो हम मनसा सेवा जैसे रिवाइज कर चुके हैं और उसमें हर किसी ने अलग अलग प्रकार से, जैसे हर किसी को कमेंट्री द्वारा योग कराने के लिए दिया जाता था, तो हर किसी को याद है कि किसने किस किस को सकाश दिया था, किस किस ग्रुप को सकाश दिया था। मैंने तो आबू निवासियों को दिया था, वो तो याद है। प्लैनेट्स को अच्छा, और सन्यासियों को दिया था, आपने किसको दिया था, और मंजू बहन ने किसको दिया था सकाश, किसको दिया था मनसा सेवा में कमेंट्री द्वारा योग कराने बोला था ना दाशा। मंजू बहन ने दिया था जौहरियों को, जो भी ज्वेलर्स है उन सबको सकाश दिया था, अलग अलग लोगों ने दिया था। उसके बाद हमने फिर उस बात को कितने बार रिवाइज किया, जैसे वो सीरीज पूरी हो गई उसके बाद भी क्या आज हम भी कर रहे हैं, वो कभी कभार कर रहे हैं ना, तो वो करना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ना कि अगर हम संकल्प द्वारा उनको याद करेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमने भी आपको बहुत बार याद किया था। केवल एक बार संकल्प करने से या एक बार सेवा करने से नहीं होता है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर आप कहीं पर सेवा करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बाद में उसकी पीठ जरूर करो, उनको याद जरूर दिलाओ, कुछ ना कुछ करके उनके संबंध संपर्क या कॉन्टेक्ट में जरूर रहो। जितना हम संकल्पों द्वारा उनको याद करते रहेंगे बार बार, तो वो टचिंग उनको होती जाएगी, क्योंकि हमारे संकल्प अभी इतने पावरफुल नहीं बने कि हम एक ही बार किसी को सकाश दे और पहुंच जाए उनको, और वो कहे कि भाई हमने आपको याद किया था, आपका संकल्प हमको टच हुआ। जिसे कि नॉर्मल भाषा में टेलीपैथी कहते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। जैसे बच्चे को कुछ हुआ तो वहां पे माँ को मालूम पड़ जाता है, या बहुत जो क्लोज रिलेशन होता है उसमें कई बार मालूम पड़ जाता है, लेकिन वो अलग बात होती है। यहाँ पर बाबा जो कह रहे हैं संकल्पों द्वारा सेवा करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर बीमार है तो हम उसे फोन नहीं करें, वो सोचे कि उसे केवल संकल्पों द्वारा याद दिलाएंगे अपनी। जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पे उस चीज को अप्लाई करना चाहिए। तो संकल्पों द्वारा सेवा करना, जैसे बाबा ने कहा कि आप सब महादानी हो, वरदानी हो, विश्व कल्याणकारी हो, दाता के बच्चे हो। तो दाता के बच्चे माना कोई मांगे तो देना ऐसा नहीं, हर किसी को देना ही है। हर किसी के साथ हमारा हिसाब किताब कहीं ना कहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस आत्मा को हम जानते नहीं है या जिसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब हमको नहीं लग रहा है, लेकिन उसके साथ भी कोई हिसाब किताब न हो। जैसे भी 2 साल पहले यहाँ पे दिलवाड़ा में मर्डर केस हुआ था 2 लोगों का, तो उसके बाद मेरा ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो हिसाब किताब है उनका, भले वो उनके पास काम करने आते थे या कुछ भी करने आते थे, उनका शायद कभी ऐसा संकल्प भी टच नहीं हुए होंगे उनको, लेकिन बाबा का जो संदेश आया था उसमें बाबा ने कहा था कि बाबा जो है पिछले 6 महीने से बच्चे को टच कर रहा था, लेकिन बच्चे की लाइन क्लियर नहीं थी। बराबर, तो हमारे संकल्प जो है जितना हम वेस्ट और निगेटिव से बचे रहेंगे तो बाबा की जो संकल्प, बाबा जो हमको टचिंग देता है वो टचिंग हम कैच कर सकेंगे। तो जितना हमारा लोगों के साथ हिसाब किताब है, कहा ना जैसे कि हमें नहीं पता कि किसके साथ हमारा क्या हिसाब किताब है, इसलिए हमें हर किसी को सकाश देना ही है, चाहे कोई भी, चाहे जैसे बाबा ने कहा कि अमृत वेले जो है संपर्क में आने वाली आत्माओं पर, अमृत वेले संपर्क में माने दिन भर में हम जिन आत्माओं के संपर्क में आते हैं केवल उन्हें ही नहीं देना है लेकिन सारे विश्व को देना है सकाश, क्योंकि किसके साथ कब हमारा कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाएगा पता नहीं। जो आज हमारा अच्छा दोस्त है हो सकता है कल वो हमारा दुश्मन बन जाए, जो जितने अच्छे दोस्त होते हैं वो उतने ही अच्छे दुश्मन बनते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की कमी कमजोरी पता होती है। नहीं वही कह रहा हूँ कि हर एक को देना है, जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है हम उन्हें खास याद करके तो देते ही हैं। लेकिन जिनके साथ हमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है या ये तो सहयोगी है, लेकिन उन्हें भी जरूर सकाश देना है कि आप सहयोगी हो, सदा ऐसे ही सहयोगी रहो। हाँ जो कुछ भी है लेकिन हर किसी को देना ही है, ऐसा कहा ना कि जैसे जरूरी नहीं है कि भाई एक को दो और एक को नहीं दो। ग्लोब पर बैठो आगे की पॉइंट में आने वाला है, लेकिन बाबा ने जैसे कहा था कि वो बीज रूप अवस्था है, अगर आप बीज रूप अवस्था में स्थित होते हैं तो आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं होती कि किसे क्या मिले। जैसे बाबा हमेशा बीज रूप अवस्था में रहता है परमधाम में, जैसे भक्ति मार्ग में भी बाबा कहता है कि आत्माएं पुकारती हैं, तो अपने आप हर किसी को मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। बाबा वहां से तो कोई संकल्प करता नहीं है, न कोई बाबा के पास संकल्प पहुंचते या बाबा को कोई कान है परमधाम में जो सुने ही दे। तो हर बाबा जो बीज रूप अवस्था में होता है जिसको जो चाहिए वो प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो हम जैसे जैसे संकल्प को कंट्रोल करते जाएंगे अपने इससे, तो अपने आप हम बीज रूप अवस्था की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं काफी समय से कर रहा हूँ, डॉक्टर सचिन ने भी क्लास में बताया था कि किसको किसको सकाश देना है, ज्ञान सरोवर को देना है, शांतिवन को देना है, ट्रोमा हॉस्पिटल देना है, पीस पार्क 13-14 हाँ जो भी है, तो हर किसी को सकाश देना है। तो जैसे मैं काफी समय से कर रहा हूँ कि सब धर्मों की आत्माओं को सकाश देना है, तो सब धर्मों की आत्माओं को तो मैं कहता हूँ कि जो भी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं उसमें सबसे पहले नंबर की जो आत्मा है जीसस क्राइस्ट से लेकर लास्ट नंबर तक की सब आत्मा, सभी को एक साथ में सकाश। जो मुस्लिम धर्म की आत्मा है चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, इब्राहिम हो, जो कुछ भी हो, पहले नंबर की आत्मा से लेके लास्ट नंबर तक की जो भी आत्माएं हैं जो आने वाली है हर किसी को एक साथ में सकाश, क्योंकि एक एक को कहां तक देते बैठेंगे, टाइम भी तो होना चाहिए उतना। जो हमारे देवी देवता धर्म की आत्मा है, नहीं नहीं काम उतरने वाली बात नहीं है, ये युक्ति से करना है सेवा। बराबर, जैसे डॉक्टर सचिन ने कहा था कि 13-14 जगह पे आपको सकाश देना है 2 मिनट में हो जाएगा, तो उनका 2 मिनट में हो जाएगा, आपका हो रहा है 2 मिनट में वो आप अपने आप को ठग रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप 2 मिनट में कर लो, मैं हर एक का स्टेज के ऊपर है, किसका मनसा कितना पावरफुल है, किसके संकल्प कितने पावरफुल है। बराबर, अगर आपके संकल्प इतने पावरफुल है तो आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में किसी के संकल्प इतने पावरफुल होंगे जो 2 सेकंड में कर सके। पहली बार तो ऊपर जाने में टाइम लग जाता है, 10-12-15 मिनट तो ऊपर जाने में टाइम लगता है, फिर संकल्प आएंगे उसको रोको, फिर ये संकल्प आएगा उसको रोको, तो इतना कोई इजी काम नहीं है, मासी का घर नहीं है कोई ना। हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं हमको ही पता है और बाबा को ही पता है। नहीं 15 मिनट माना मैं इन जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप योग करेंगे, खाली आगे के इसमें आएगा नियम के इसमें बताएंगे वो, तो यहाँ पे हम जो बात चल रहे हैं कि जैसे मैं करता हूँ, जैसे हिंदू धर्म की आत्मा है, देवी देवता धर्म की आत्मा है, तो पहले नंबर की जो है कृष्ण या ब्रह्मा बाबा की आत्मा से लेके जो भी 33 करोड़ लास्ट नंबर तक की आत्माएं हैं सबको सकाश, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जिसका सो भी हिसाब किताब हो, तो हम आपको माफ कर रहे हैं, आप हमको माफ करो। तो ये जो एक नहीं नहीं मैंने कहा ना किसके साथ हमारा क्या हिसाब किताब है हमें नहीं पता ना। आप ट्रेन में जा रहे किसके साथ क्या आपका हिसाब किताब है, कोई आपको मार के चले जाए, कुछ चोरी करके चले जाए, बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं होता है। बराबर, तो किसके साथ क्या हमारा हिसाब किताब है पता नहीं, इसलिए जहां अगर आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि हम दिन में यहाँ यहाँ जाने वाले, ये करने वाले, जैसे मेरा होता है कि दिन में ये सेवा है पता है, तो मैं बाबा को पहले से बता देता हूँ कि यहाँ यहाँ जाना है, ये करना है, तो अपने बाबा की मदद मिलती है उस समय। बाकी हमको अगर नहीं पता है तो उसके लिए इन जनरल हम पहले से ही बाबा को बता के रखें, तो ये संकल्प द्वारा सेवा करना। अचानक आपको कोई बुला रहा है, जैसे कई बार मुझे फोन आता है लोगों का, भाई हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो मैं उसी समय बाबा को याद करता हूँ कि भाई देखो उसका फोन आया, वहां पे जाऊं दो मिनट में काम कर दो, फटाफट में वहां से आ जाऊं। वो 90% केसेस में ऐसे होता है कि गए हाथ लगाए वो चीज ठीक हो जाती है और वापिस आ जाते हैं वहां से। तो ये सारी जो है बाबा की मदद मिलती है हमको, जितना बाबा को हर कर्म में यूज करेंगे। चलिए ये बातें यहाँ शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले क्लास में जो मैंने एक बार बताया था कि मैं जब भी निकलता हूँ अगर दोपहर को भोजन के लिए रात को, खास करके दोपहर के समय जब बाबा के दिन होता है, पार्टी के समय भोजन खत्म हो जाता है, तो मैं बाबा को हमेशा संकल्प करके जाता हूँ कि बाबा भोजन करने जा रहा हूँ, देखो 2 बज गए, भोजन होगा या नहीं होगा पता नहीं, आप मुझे भोजन करा दो। तो कई बार मैंने कहा ना ऐसा होता है कि भोजन नहीं होता है और मेरे जाते ही कहीं VIP डाइनिंग से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, मुझे भोजन मिल जाता है। तो ये बातें कोई मजाक में लेने की या इसमें लेने की बातें नहीं, बाबा ने कहा कि हर चीज में यूज करो। जैसे बैंक में जब नोटबंदी का चल रहा था तो मुझे पता था कि मैं जा रहा हूँ, लोगों ने कहा आप 2 घंटे के पहले आओगे ही नहीं करके, इतना वहां पे रश है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ 12:15 बजे, 12:30 तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि 12:30 बजे मुरली पढ़नी है यहाँ पे। तो मैं बाबा को याद करके गया, वहां कूपन निकाला, उसी समय मेरा नंबर अनाउंस हो गया। मैं 3-4 बार दिखते रहा कि मैं कंफ्यूज, मतलब इसमें तो नहीं हूं करके, सचमुच मेरा ही नंबर था, मैं 12:15 बजे वापस भी आ गया। तो हर चीज में बाबा को आप यूज करो, जितना आप सच्चाई सफाई से बाबा के साथ रहोगे बाबा आपको मदद करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि हर चीज में यूज करो। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, जब घर में जाते हैं तो कई माताएं भाई होते हैं कि हम जब सेंटर से निकलते हैं तो हमको ऑटो नहीं मिलता है। तो मैंने एक बार कहा कि अब जब निकल रहे हो मुरली से उसी समय बाबा को बोलो, या घर से निकलते समय बाबा को बोलो कि मैं बाहर निकलूं और मुझे ऑटो मिले, सेंटर पे बराबर पहुंचूं, सेंटर से जैसे निकलूं उस समय ऑटो मिले। तो कई लोगों का अनुभव है कि हम पहले से बताते हैं और वो काम होता ही होता है, ऐसा नहीं है। जितना आप सच्चाई सफाई से बाबा के साथ रहेंगे बाबा आपको मदद करेगा ही। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि संकल्पों के द्वारा सेवा करना। सेकेंड 14th नंबर का जो है, अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो, सारा दिन तिलकधारी होकर रहो तो कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है, तिलक जो है आपके विजय की निशानी है। और जैसे यहाँ भी फर्स्ट इसमें हमने देखा 13वें पॉइंट में संकल्पों के ऊपर, तो बाबा ने 2004 की एक मुरली में कहा है कि अगर किसी बद्दुआ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है या आपको लगता है तो आप उससे 10 गुना ज्यादा दुआएं देकर उस बद्दुआ के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना क्या? उस समय वो शक्ति यूज करें, लेकिन वो शक्ति पहले से हमारे अंदर होनी चाहिए ना, तो ही आएगी। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 10-15 मिनट तो हमको ऊपर जाने में ही लग जाते हैं, अगर सचमुच कोई अभ्यास करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैंने कहा ना हर एक की स्टेज के ऊपर है। जैसे मैं योग में बैठता हूं तो कम से कम 5 से 10 मिनट में पहले आंख बंद करके ही बैठता हूं मैं। पहले जो होता है कि अपने आपको आत्मिक स्वरूप में स्टेबिलाइज करो कि मैं सचमुच आत्मा हूं, योग में जाकर बैठ गए मैं आत्मा हूं और देह को छोड़कर जा रहा हूं, उससे कुछ अनुभूति नहीं होती है। जब जैसे मैंने कहा भक्ति मार्ग में भी लोगों ने पहले क्या किया, पहले अपनी सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, उसके बाद में अपने मन को, जैसे जैसे आप सांसों को कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने आप अंदर जाओगे। हर एक चीज स्थूल से चालू होकर फिर सूक्ष्म में जाती है। अब डायरेक्ट सूक्ष्म में जाने का अभ्यास करो कुछ नहीं होता है उससे। जितना आप नियम, जैसे बाबा कहते हैं कि नियम कायदे में फायदा होता है, जितना बैठने का अभ्यास करो, बाबा कहते हैं आपका योग भल नहीं लगे लेकिन आप जाकर जरूर बैठो, एक ने दिन आपका योग लगेगा। कि जहां पे जितने लोगों के संकल्प चलते हो, जितना आप कायदे प्रमाण चलते हैं, तो बाबा की मदद आपको अपने आप मिलती है। हम केवल जाकर बैठे और सोचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उससे कुछ नहीं होता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान जैसे बताया कि बाबा ने कहा कि सवेरे तिलक लगा लो, तो तिलक लगाते हैं वो दिन भर याद रहता है। फिर जैसे कोई बीमारी वगैरह होती है, वायरल बुखार या कुछ भी होता है, तो पहले से लोगों को टीके लगाते हैं ना, लेकिन वो टीके का टाइम पीरियड होता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना, उसके बाद जो उसकी पावर कम होती है फिर आपको दोबारा लगाना पड़ता है। तो हमने सवेरे टीका लगा लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो वो टीका इतना पावरफुल होता है कि हमारा टीका इतना पावरफुल है। आपने एक बार सवेरे संकल्प कर लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो दिन भर वो संकल्प में आप स्थित रहेंगे, हर समय आपको याद रहेगा, मुश्किल है ना। तो उसको जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, जितना भी समय ट्रैफिक कंट्रोल होता है या जो कुछ होता है, बार बार जितना भी रिवाइज करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सवेरे आपने क्या अनुभव किया था, तो उसी अनुभव को आप आगे दिन भर बढ़ा सकते हैं, बाबा की मदद मिल सकती है आपको, और फिर आगे आपका जो भी सेवा है उसमें आप सफलता पा सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना उन शक्तियों को सचमुच अपने में रियलाइज करना, उनका अनुभव करना, और सबसे पहले स्वयं को समझना कि मैं सचमुच मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। लेकिन सर मास्टर सर्वशक्तिमान के पहले कि मैं सचमुच आत्मा हूँ, उस बात को भी रियलाइज करना कि मैं इस भ्रुकुटी के मध्य चमकने वाली आत्मा हूँ। जितना आप वो अभ्यास करेंगे फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं आप। डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से टेंथ स्टेप पे जाए ऐसा पॉसिबल नहीं, जाने वाले जा भी सकते हैं लेकिन वो लंबे समय का अभ्यास चाहिए होता है। जैसे आगे ऑटोमेटिक मशीन के बाबा ने लिए बताया तो उसमें हम देखेंगे। जैसे सर्वशक्तियों की बात यहाँ पर बाबा ने की, तो आठ जो शक्तियां हैं मुख्य वो तो हमें पता ही है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय, सामना, सहयोग, संकीर्ण और समेटने की शक्ति। तो ये अष्ट शक्ति है। उसके अलावा कुछ शक्तियां और निकाली हुई है। ए से पहली है एकाग्रता की शक्ति, दूसरी है अंतर्मुखता की शक्ति, तीसरी है अनुभव की शक्ति जिसे बाबा कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी, और चौथा है आध्यात्मिक भाषा या स्पिरिचुअल लैंग्वेज। जो हम आध्यात्मिक भाषा जैसे बाबा कहते हैं ना कि शुरुआत में जब आए तो लोग कहते थे कि इन जिस किसी को भी देखो इनका रहना चलना बोलना सब कुछ एक जैसे ही है। तो जैसे हमारे पास कोई आता है, हम जिसको एक बात सुना रहे दूसरे के पास भी जाएंगे तो भी सेम बात ही सुनाएंगे, तीसरे के बाद भी जाएंगे तो सब कुछ हर कोई सेम ही सुनाएगा। तो लगता है कि हर कोई एक ही मॉडल एक ही सांचे से ढल के निकले हुए, तो भी एक प्रकार की शक्ति है ताकि लोगों पे फिर को विश्वास होता है उस पर। एक एक बात बताया और दूसरी दूसरा बात बताया तो उस पर विश्वास नहीं होता है, तो उनको इससे मालूम पड़ता है कि इन्हें पढ़ाने वाला जो है या ये जो कुछ लाइफ में ला रहे सब कुछ हर कोई सेम ही कर रहा है। दूसरा जो निकाला है बीस है, तो बीस से है ब्रेक लगाने की शक्ति। जैसे हमारा अभी सीरीज चल रहा है फुल स्टॉप, तो कितना हम हमारे संकल्पों पे या जो कुछ हमारे कर्म हो रहे हैं हमने कहा स्टॉप और वहां पे स्टॉप हो जाए। तो बी से है ब्रेक लगाने की शक्ति, सी से है कंट्रोल शक्ति या कंट्रोलिंग पावर, कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक है ब्रेक लगाना, एक है कंट्रोल होना। कई बार आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो होशियार ड्राइवर होते हैं वो ब्रेक न लगने के बाद भी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं गियर से, है ना। आप फोर्थ गियर में डायरेक्ट फर्स्ट गियर में गाड़ी लेके आओ, गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। जितना फास्ट एक्सीडेंट होने वाला होगा उतना फास्ट एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये होता है कंट्रोलिंग पावर से। फिर डी से निकाला है दुआओं की शक्ति या वरदान की शक्ति, तो यहाँ लिया है दुआओं की शक्ति। फिर है सेकेंड दृढ़ता की शक्ति। थर्ड है दिव्य नेत्र की शक्ति। जैसे बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे का जन्म होते बाप ने दिव्य दृष्टि का, दिव्य दृष्टि तो नहीं कहेंगे दिव्य नेत्र कहेंगे हम यहाँ पे। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा हमेशा अपने पास में ही रखता है, किसी को देता नहीं। तो यहाँ दिव्य नेत्र की शक्ति, और फोर्थ है दिव्यता की शक्ति। उसके बाद जी से निकाला है एक है ग्रहण शक्ति और एक है ज्ञान की शक्ति। जितना जितना हम ज्ञान को रिवाइज करेंगे हमारे लाइफ में आते जाएगा, तो ये ज्ञान की भी शक्ति है। फिर एम से निकाला है मोल्ड करने की शक्ति। अपने आपको बाबा कहते हैं ना कि अगर आप गोल्ड, रियल गोल्ड की निशानी क्या है, मोल्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि एडजस्ट करना। सेकंड है मौन की शक्ति, जितना आप मौन में रहेंगे तो मौन भी एक शक्ति है। थर्ड है महसूसता की शक्ति। फोर्थ निकाला है मनन शक्ति, जो मनन करते हैं चिंतन करते हैं वो भी एक शक्ति। जैसे हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी शक्ति नहीं आएगी। उसके बाद है मधुरता की शक्ति। मधुरता की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे किसी को देखते हैं कि वो हमेशा कुछ भी हो हमेशा हंसते ही रहेंगे, हमेशा मिठाई बोलेंगे, लेकिन एक होता है चापलूसी करना और एक है मधुरता, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन उसके बीच की जो लाइन है बहुत थीन लाइन है, बहुत पतली लाइन है। उसके बाद फिर एन निकाला है एन, एन से है निर्भयता की शक्ति। फिर है पी, पी से है परिवर्तन करने की शक्ति, और सेकंड है पवित्रता की शक्ति। परखने की शक्ति तो अष्ट शक्तियों में आएगी, ये उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर ये। आर से निकाला है रूहानियत की शक्ति, और फिर है एस, एस से बहुत सारी शक्तियां हैं। पहली है शीतलता की शक्ति, दूसरी है सत्यता की शक्ति, तीसरी है समय की शक्ति, चौथा है सेवा की शक्ति, हम जो भी सेवा करते हैं उसे भी शक्ति मिलती है। फिर है शांति की शक्ति, गीत बजता है ना शांति की शक्ति से। फिर है संगठन की शक्ति, जितना हम जिस भी संगठन में रहेंगे, अच्छे संगठन या बुरे संगठन में, उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। उसके बाद जो है स्नेह की शक्ति। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, शिव बाबा, श्याम, सुशील, सचिन सब ऐसे ही आते सभी। आठवां है स्वराज्य अधिकारी की शक्ति। स्वराज्य अधिकारी माना हम कितना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने आप को चला रहे हैं, वह स्वराज्य अधिकारी की शक्ति। बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ ही अपने आपको आप चला नहीं सकते, यहाँ स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते, तो वहाँ विश्व पर क्या राज्य करेंगे। उसके बाद है संबंधों की शक्ति, अलग अलग संबंधों से, है ना। जैसे कमलेश भाई ने रिवाइज कराया था 54 108 का आता, 54 ही रिवाइज कराया, बाकी का फिर बाद में रिवाइज करेंगे। बाबा क्या एफ से क्या बताए, फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद है वी से निकाला है, एक है वाणी की शक्ति, पावर ऑफ स्पीच, और फिर है वफादारी की शक्ति। अब बाबा के साथ कितने वफादार रहते हैं, बाबा कहते हैं ना जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को छोड़कर किसी को याद नहीं करती, तो आप बाबा को कितना समय याद करते हैं। तो ये कुछ शक्तियां निकली है, शायद मेरे हिसाब से 32 है और बाकी की 8, तो टोटल 40 हो गई। उसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है 15th, रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो, एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है, कब आता है अलबेलापन, जिम्मेवारी भूल जाते हैं, और अच्छा और अलबेलापन प्राप्तियों को भूल जाते हैं, और तो अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझकर करते हो, नियम नहीं बनाते हैं। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है, तो दफ्तर में जाना बाबा ने जैसे लौकिक एग्जांपल दिया, दफ्तर में जाना माना काम करना, कोई भी काम करना, बिना काम के आपको पैसा नहीं मिलेगा, पेट कैसे चलेगा आपका। तो जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है, ऐसे अपने आप को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ, मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है। ऐसे अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। स्व की चेकिंग को आवश्यक कार्य समझ रिफ्रेश करो तो सारा दिन उसका बल मिलेगा। स्व की चेकिंग को आवश्यक कार्य समझ रिफ्रेश करो तो सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर अलबेलापन आया तो अपने आप को सजा दो। दृढ़ संकल्प रख, अपने जीवन का नियम बनाओ तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। दृढ़ संकल्प रख, अपने जीवन का नियम बनाओ तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो ये 2004 की मुरली में बाबा ने स्व चेकिंग के लिए चार बातें बताई थी। पहला था निमित्त भाव, निर्माण निर्माण, और चौथा है निर्वाण निर्वाण। पहला है निमित्त भाव, दूसरा निर्माण, तीसरा निर्माण, और चौथा है निमित्त निर्वाण। तो ये चार बातें बाबा ने बताई थी स्व चेकिंग के लिए। और जैसे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के नियम, तो ब्राह्मण जीवन के कौन से नियम है, अमृत वेले और मुरली क्लास और शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, भोजन की शुद्धि, बाबा की याद में भोजन, और जो भी है शुद्ध भोजन धारणा, स्व उन्नति, स्वाध्याय, न दुख देना देना, न दुख लेना, आपस में कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, सच्ची दिल साफ दिल, तो ये सारे ब्राह्मण जीवन को ये नियम है। तो हमारी लाइफ में जो है नियमों का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं ना किसी की लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है तो उन्हें अपनी लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे किसी को थोड़ा दिन पहले खांसी हुई थी तो मैंने उसे कहा कि भाई आप जो पैर में जो है नीचे तलवे में विक्स लगाओ, वो खांसी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और रात को सॉक्स पहन के सो जाओ। मैंने भी कहीं पर यह सुना था 2-3 साल पहले, तब से मैं जब भी मुझे खांसी होती तो मैं यही करता हूँ और ठीक भी हो जाती है। तो मैंने किसी को कहा तो 15 दिन हो गए 20 दिन हो गए कर ही नहीं रहे और दिन भर खांसते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई आपने किया नहीं, तो बोले नहीं हम कमरे में जाते भूल जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल होता है कि हम भूलते क्यों हैं? आपको खांसी है, आप खांस रहे फिर भी आप भूल रहे, अटेंशन नहीं है, अटेंशन की कमी है। जैसे मेरा बहुत समय का नियम है, लगभग 25 साल हो गए, रात को जाता हूँ कमरे में तो मुझे ब्रश करना ही करना है, चाहे रात को 12 बजे जाऊं, चाहे 1 बजे जाऊं, तो चाहे 2 बजे जाऊं, ब्रश करके ही सोना है। और अभी 10-12 साल से दूसरा नियम बना है कि दोनों मतलब हाथ पैर जो है ठंडे पानी से धुलाई करना ही है, चाहे 11 बजे जाऊं, चाहे 12 बजे जाऊं, कितने भी बजे जाऊं, करना ही करना है। तो हमारे लाइफ में नियम होने चाहिए, बिना जैसे बाबा ना कायदे के फायदा नहीं होता है। जितना हम अपने आप को नियम में बांधेंगे, जैसे कहा ना कि हर चीज थूल से लेकर सूक्ष्म में जाती है, नियम बनाया है बाबा ने, क्यों नियम बनाया, अमृत वाला उठना ही है। अब जितना अमृत वाले उठते जाएंगे, एक न एक दिन आपको रियलाइज हो गई कि हमें क्या करना है, हम किसके लिए उठ रहे। जब हम प्राप्तियों को ध्यान रखेंगे तो अपने आप जो हमारी नींद खुलेगी और हम योग करेंगे, चाहे फिर आधा घंटा करें चाहे 1 घंटा करें। तो बिना कायदे के फायदा नहीं होता, तो हर एक हमारे लाइफ में जो है हमको नियम होना ही चाहिए। हम बिना नियम के चल रहे, बस कभी बाबा को गुड नाइट किया, कभी नहीं किया, कभी बाबा के कमरे में गए, कभी नहीं गए, हमारे साथ भी होता है। कई बार नॉर्मली तो होता है कि बाबा के कमरे में जाते ही गुड नाइट करने, लेकिन अगर कभी नहीं भी गए तो मेरा ये नियम है कि मैं बेड पे बैठे बैठे ही 5 मिनट 7 मिनट में बाबा को पूरे दिन का समाचार सुनाना ही सुनाना है मुझे। बाकी करे ना करे अलग बात है, जैसे आत्माओं को सकाश देते हैं या प्रकृति को भी दोबारा रात को सोते समय मतलब 5 मिनट सकाश देते हैं, चाहे बाकी की चीजें करे ना करे, लेकिन बाबा ने जो नियम बनाया है वो भले आप बेड पे बैठो चाहे बाबा के कमरे में बैठो वो आपको करना ही है। तो इन नियमों का जो हम जितना चलेंगे उसका भी जो हमें बल मिलता है, तो एक ये नियम की शक्ति और एक इसमें ऐड हो सकता है अलग इसमें शक्तियों में। तो हमारी लाइफ में नियम होना ही चाहिए, बिना नियम के चल रहे जब मन आया जब खाया, आज मूड हुआ तो योग में गए, आज मूड नहीं हुआ तो नहीं गए, आज मूड हुआ तो मुरली क्लास में गए, आज मूड हुआ तो किया, तो वो मूडी नेचर में आता है। हमको तो योगी बनना है ना, मूडी थोड़ी बनना है हमको। तो जितना हम लाइफ में नियमों को लाएंगे तो बाबा की मदद अपने आप मिलती जाएगी। फिर यहाँ नेक्स्ट जो 16th पॉइंट है, रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, ऐसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से, हम विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड बन विश्व वरदानी शक्ति, हमको ने बाबा कहते हैं आप सब शक्ति है, बाबा है शिव शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, ऐसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाओ। जैसे आजकल भिन्न भिन्न स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबबाशी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो वाइब्रेशन फैलने लगेंगे। अमृत वेला ऐसा पावरफुल बनाओ जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान प्राप्त हो। अमृत वेला ऐसा पावरफुल बनाओ जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान प्राप्त हो। जैसे बाबा ने कहा कि सब आत्माओं के ऊपर गुलाबबाशी करनी, तुम संकल्प द्वारा तो हर एक को याद करते ही हैं, जिसको जो चाहिए उसको देते ही है। जैसे कोई हमारे रिलेटिव होते हैं अगर वो बीमार होते हैं तो हम उन्हें सकाश देते हैं, तो उनके साथ में हम ये कर सकते हैं कि खास उनको और आम सारी दुनिया की बीमार आत्माओं को जो भी बीमार है, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं खास भारत के लिए आया हूँ, खास तुम बच्चों के लिए आया, आम सभी के लिए आया हूँ, तो हम उस समय ये संकल्प कर सकते हैं कि खास उस आत्मा को और आम इन जनरल सभी को सकाश दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऑटोमेटिक मशीन, तो ऑटोमेटिक मशीन जो होती है उस ऑटोमेटिक मशीन को बनाने के लिए भी टाइम जाता है और दूसरा ऑटोमेटिक चलनी भी चाहिए। जैसे कोई भी चीज ऑटोमेटिक होती है, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी में एक गियर से दूसरा गियर चलता है तब एंड में जाके कांटा घूमता है, अगर एक गियर भी ब्रेक हो जाए तो कांटा नहीं घूमेगा ना। जैसे मैं किंगफिशर बियर में था तो वहां हमने देखा था हर एक चीज ऑटोमेटिक चलती है वहां पे, खाली वहां पे वो बोतल धुलाई करके रखते हैं उसमें ऑटोमेटिक भरेगा, ऑटोमेटिक आगे जाएगा, कैप लगेगा, फिर बॉक्स आएगा, बॉक्स के ऊपर गम गिरेगा, बॉक्स पहले खुलेगा ऑटोमेटिक मशीन से, उसमें बोतल जाएगी, गम गिरेगा, फिर आगे जाएगा प्रेसिंग मशीन होगा जो गर्म करता है और तो गम जो है सूख जाएगा, सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अगर एक सेकंड का फर्क हो गया तो बोतल पहले आगे जा रही और बाद में कैप लगा रहा है, कुछ है ही नहीं वहां पे, बोतल पहले आगे जा रही और ऊपर से ड्रॉप गिर रहा है, बॉक्स पहले जा रहा है और बाद में गम गिर रहा है उसके ऊपर। तो ऑटोमेटिक मशीन माना जो है बाबा ने जैसे यहाँ पे बताया कि हमें अपने आप को अपने अटेंशन देने की बात बताई है कि जितना आप ऑटोमेटिक करते जाएंगे, जैसे बाबा ने कहता है कि जैसे आप कहीं वॉकिंग को जा रहे हैं, बहुत लोगों के जैसे होते हैं कि वॉकिंग पे जाते हैं बराबर कोई ना कोई संकल्प लेते हैं या मनन चिंतन करते हैं, तो जैसे ही आपके पैर चलने शुरू होंगे आप वॉकिंग के लिए जाएंगे अपने आप जो है आपका मनन चिंतन शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मशीन है। लेकिन उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए होता है, कोई सोचे कि हम एक दिन में ऑटोमेटिक मशीन बनाए और बन जाए तो पॉसिबल नहीं है, हर चीज के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए होता है। और अभ्यास करने के बाद में जैसे बताया कि 2 मिनट में आप सबको सकाश दे दो या 2 सेकंड में दे दो फिर हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक चीज बनने के लिए भी वो टाइम चाहिए होता है। तो जितना हम अपने आप को नियम कायदे के हिसाब से चलाएंगे अपने आप पर अटेंशन देंगे उतना जो है ऑटोमेटिक चीज जो है फिर धीरे धीरे करके जैसे बाबा ने कहा कि संकल्पों की शक्ति बढ़ती जाएगी। पहले जो हमको 15 मिनट लगता है ऊपर जाने के लिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, आपने 2 बार किया प्रैक्टिस या 3 बार किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो अपने आप आपको वो सचमुच एनर्जी जो है पहली बार तो फील होनी चाहिए, वो एनर्जी सचमुच आपको फील होने लगेगी। जब आप में वो एनर्जी फील होगी तो आप करेंगे, क्योंकि जैसे कहा ना हमारा योग जो है कोई अंधश्रद्धा वाला कोई भक्ति वो टाइप का नहीं है कि केवल आप तोते के मुआफिक रट रहे, हमको अपने आप को पहले रियलाइज करना है, उस चीज में स्टेबिलाईज करना है अपने आप को, अपने आप को मतलब धारण करते हैं उन चीजों को, उसके बाद में ही आप दे सकेंगे। केवल हम सोच रहे हैं हम दाता के बच्चे और हम सबको दे रहे हैं तो उससे उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं ना। और हम केवल ये तो केवल विजुअलाइजेशन बोलो या केवल खाली डब्बा है और हम केवल हिला रहे हैं, अंदर कुछ है ही नहीं उसके अंदर। हम दाता के बच्चे दे रहे हैं, हमको लग रहा है मिल रहा है, हम संकल्प द्वारा किसी को याद कर रहे हैं, हमको लग रहा है भाई उसको वहां पे पहुंच रहा है, लेकिन उसके पास पहुंच ही नहीं रहे वहां पे। तो जितना नियम निभाते, हाँ तो बात वही है कि नियम जितना आप निभाते जाएंगे तो संकल्पों में आपकी पावर आती जाएगी। बहुत मेन बात है कि बाबा की मदद मिलेगी आपको, जितना आप नियम कायदे के हिसाब से चलेंगे बाबा की मदद आपको मिलती जाएगी। तो ये जो है अमृत वेले के ऊपर जो हमने जो पॉइंट्स थे वो रिवाइज किए। ओम शांति।